ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. హం శ్లోక్ సంఖ్య 6 సే జో హై క్రమ్ కో ఆగే బడాతే హై. జైసే ఇన్ మే కోయి తాత్పర్య నహీ హై, ఫాస్ట్ మూవింగ్ ఇన్సిడెంట్స్ హై, క్యూంకి జైసే శీర్షక్ జో హై వో అప్నే ఆప్ మే కాఫీ హై సమజానే కే లియే కి భగవాన్ ద్వారా బలి మహారాజ్ కో కా బాధా జానా తో బాధా జాయేగా. तो अभी उससे पहला जो है अध्याय जो है वो हो गया. बलि महाराज ने जो है ब्रह्मांड जो है वो समर्पण कर दिया और अब जो है तो यही समर हनय सगभीर दिव्या गंधानुले बिनय धूपय दीपय सुरा सुरभि भैर लाजक्षता पालांकुर स्तवनैर जय सद्मी शब्दश्च तन्वीर्या महिमानक మహిమానాకితై నృత్య బాధిత్ర గీతశ్చ శంఖ దుందుభి నిశ్శవనై. సో యే జో హై అచ్చా ఇస్కా అనువాద్ దేఖియే. ఉన్హోనే సుగంధిత్ పుష్ప జల్ పాద్య తథా అర్ఘ్య చందన్ తథా అగురు కే లేప్ ధూప్ దీప్ లావా అక్షత్ ఫల్ మూల్ తథా అంకుర్ సే భగవాన్ కీ పూజా కీ. ऐसा करते समय उन्होंने भगवान के यशस्वी कार्यों को सूचित करने वाली स्तुतियाँ की और जय जयकार की. इस तरह भगवान की पूजा करते हुए उन्होंने नृत्य किया, वाद्य यंत्र बजाए, गाया और शंख और दुंदुभि बजाई. तो ये अभी सब देवतागण भी जो है वहाँ पर आ चुके हैं. तो ये मतलब ये वो श्लोक है जिसे आप देख सकते हैं कि भगवान की जो है पूजा अर्चना जब की जाती है तो क्या क्या सामान इस्तेमाल होता है, उसकी पूरी डिटेल है. तो अगर आप कभी हमारा जैसे पूजा विधि है वो देखेंगे तो उसमें भी यही सब इस्तेमाल होता है, बेसिक चीज़ें. तो आगे देखें तो अभी ये चल रहा है. जाम्बवान ऋक्षराजस्तु भेरी शब्द महो मनोजव विजयम दीक्षा सर्वा सर्वाशु महोत्सव अघोषयत. तो अब ऋचों के राजा जाम्बवान भी इस उत्सव से में सम्मिलित हो गए. उन्होंने सारी दिशाओं में विगुल बजाकर भगवान वामन देव की विजय का महोत्सव घोषित कर दिया. तो जाम्बवान बहुत पुराने व्यक्ति हैं, फिर बहुत आप देखेंगे कई युगों में तो ये क्योंकि सत्यों की घटना है. सो वहाँ से लेके जो है द्वापर तक हम जो है जाम्बवान का कुछ ना कुछ हमें मिलता रहता है. तो आगे क्या हुआ. महिम सर्वामृतम दृष्ट्वा त्रिपाद व्याज याचनाय उचु स्वभार्तुर असुरा दीक्षितास्य मा मर्षितः. जब बलि महाराज के असुर अनुयायियों ने देखा, अब शुरू होगा धीरे धीरे ठीक है. असुर अनुयायियों ने देखा कि यज्ञ संपन्न करने को कृत संकल्प उनके स्वामी ने वामन देव द्वारा 3 पग भूमि मांगे जाने के बहाने से सब कुछ गवा दिया तो वे अत्यधिक क्रुद्ध हुए और इस प्रकार बोले ठीक है. तो अब जो है उनको धीरे धीरे बात समझ आ रही है. और अब क्या बोले, अब डायलॉग सुनिएगा. नवायम ब्रह्म बंधुर विष्णुर माया विनम्र द्विज रूप प्रतिच्छन्नो देव कार्यम चिकीर्षति. ये वामन निश्चित रूप से ब्राह्मण ना होकर ठगराज भगवान विष्णु है. उसने ब्राह्मण का रूप धारण करके अपने असली रूप को छिपा लिया और इस तरह यह देवताओं के हित के लिए कार्य कर रहा है. सो अब जो है निकाल लिया उन्होंने भगवान विष्णु का असली रूप, पता लग गया है. तो अब कोसने लगे उनको. अनेन याचमानेन शत्रुण वटुरूपिणा सर्वस्वम नो ऋतम भर्तुर न्यष्ट दंदस्य बर्हिषि. हमारे स्वामी बलि महाराज यज्ञ करने की स्थिति में होने के कारण है दंड देने की अपनी शक्ति त्याग बैठे हैं। इसका लाभ उठाकर हमारे शाश्वत शत्रु विष्णु ने ब्रह्मचारी भिखारी के वेश में उनका सर्वस्व छीन लिया है। तो पुरानी परंपरा है, अभी भी ऐसे ही है, 21st century में ब्रह्मचारी भिखारी के वेश में जाते हैं और कई लोगों का बहुत कुछ छीन आते हैं, दान कहते हैं। यानी छीनते तो नहीं है मगर कई लोगों का ऐसा महसूस होता है। तो छीन लिया उनका सब कुछ, अब जो है असुर कह रहे हैं और अब उनको छोड़ेंगे नहीं, देखना आप। सत्य व्रतस्य सततम दीक्षितस्य विशेषता नान्यतम भाषितुम सक्यम ब्रह्मण्यस्य दयावतः। हमारे स्वामी बलि महाराज सदैव सत्य पर दृढ़ रहते हैं और इस समय तो विशेष रूप से है क्योंकि उन्हें यज्ञ करने के लिए दीक्षा दी गई है। ये ब्राह्मणों के प्रति सदैव दयालु तथा सदैव रहते हैं और कभी भी झूठ नहीं बोल सकते। तो यानी मतलब कहने का क्या मतलब है, सच बोलने की कीमत अदा कर रहे हैं, ठीक है, नहीं बोलना चाहिए। देखो बोल के जो है क्या हुआ है इनके साथ। तस्माद इसीलिए तस्माद अस्य वधो धर्मो भ्रातुर शुश्रूषणम चना इति आयुधानी जगरूर बलेर अनुचरासुर। तो इसीलिए अतः इस वामन देव भगवान विष्णु को मार डालना हमारा कर्तव्य है, ठीक है, भगवान को मार डालना यही हमारा धर्म है। मार डालना और अपने स्वामी की सेवा करने का तरीका है। इस निर्णय के बाद महाराज बलि के असुर अनुयायियों ने वामन देव को मारने के उद्देश्य से अपने अपने हथियार उठा लिए। तो जो है अब सब जो है हथियार बंद होके जो है वामन देव पे चढ़ाई करने की तैयारी हो रही है। तो वैसे ये जैसे अब ये लड़ाई अब होने वाली है, तो ऐसे मेजर जैसे कई बार सुनते रहते हैं, अब तो ये 8th कैंटर तो वैसे ही काफ़ी भरा हुआ है, 8th, 6th, 7th, 8th, 9th, मतलब सब में ही है। असुरों के साथ जो है देवताओं का युद्ध जो है काफ़ी देखने को मिलता है। तो कई बार ये भी होता है कि ये शायद हमेशा लड़ते ही रहते हैं आपस में, ना ऊपर और कोई काम नहीं होता इनके पास, हमेशा लड़ते रहते हैं। तो वैसे शास्त्र में जो है पद्म पुराण के हिसाब से मेजर 12 युद्ध बताए गए हैं असुर और देवताओं के बीच में, मेजर वॉर्स, और उसमें से ऑलमोस्ट 9 युद्ध जो हैं वो भागवतम कवर करता है और बाकी छोटे छोटे कभी कभी मुठभेड़ हो जाती है, बट मेजर जो है 12 लड़ाइयाँ हुई हैं। सुनना चाहेंगे क्या है? अच्छा ठीक, बता देता हूँ, एटलीस्ट भागवतम वाले बता देता हूँ। सो मैं क्रोनोलॉजिकल नहीं बता रहा, क्रोनोलॉजिकली नहीं बता रहा, बट मोटा मोटा बता रहा हूँ। एक है जो हम जिसके अंदर हिरण्याक्ष और वराहदेव का युद्ध देखते हैं। सेकेंड उसके बाद एक्चुअली वो हिरण्याक्ष वराह से पहले का कहानी पता ही है सबको कि वो वरुण देव को ललकारा कि उनकी खूब बेइज्जती करी उन्होंने अच्छे से, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर यही होना था। तो उसके बाद फिर आता है, फिर उनका भाई भी कम नहीं था नरसिंहदेव, ठीक है, तो उनके साथ वो युद्ध, और उस युद्ध के बाद जो है जो बच्चे कुचे जितने भी उसके सारे असुर संगी साथी थे, तो दैट वॉज ए बिग वॉर। फिर आता है इसका वृत्रासुर के साथ इंद्र की लड़ाई, तो हार और जीत फाइनली, तो इस तरीके से। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है अमृत मंथन, जिसमें लड़ाई होती है अमृत मंथन के बाद, जब उनको पता लगता है कि जो मैं फिर बेवकूफ़ बना दिया, तो फिर लड़ाई होती है। फिर उसके बाद है एक फेमस लड़ाई है वो बिटवीन शिवा एंड त्रिपुरा, जो त्रिपुर जो नगर था उसके अंदर जो थे असुर थे, जैसे उनका नाम त्रिपुरारी पड़ा, तो उनके साथ एक मेजर वॉर जो है वो रहा। फिर रहा ये वामनदेव वाला जो अभी है, इसमें विप्रचित थी सारे, तो ये लड़ेंगे। फिर उसके बाद एक है जो इंद्र ने जो है विरोचन को मारा, प्रहलाद के जो बेटा था तो उनको मारा, तो वो एक है। फिर उसके बाद बलि के साथ दो युद्ध हैं, एक में बलि हारा, एक में बलि जीता, ठीक है, तो ये है। फिर बाद में आता है एक बहुत छोटा सा मेंशन है फर्स्ट कैंटो में, इनफैक्ट थोड़ा सा, कि बिटवीन इंद्र एंड निवेदा का वचस, ये थे अर्जुन के सहायता से जो है जीते, पहले नहीं हाथ नहीं आ रहे थे उनके, तो ये मेजर लड़ाइयाँ हैं। जो इसके अलावा और तीन लड़ाइयाँ जो हैं शास्त्र में बताया गया, सॉरी इनफैक्ट एक लड़ाई और है शास्त्र, दो दस बताए तो और है। तो दिस आर द मेन 10 मेजर वॉर्स बिटवीन डेमीगॉड्स एंड डीमंस जो है, जो कवर किया गया, तो होता रहता है। एनीवे, सो आगे देखते हैं, जस्ट एन इंफॉर्मेशन। अच्छा, तो अभी लड़ाई शुरू होने वाली है। ते सर्वे वामनम हंतुम शूलपत्ति सपानया अनिच्छन्तो बले राजन प्राद्रवान जात मयवान। तो क्या हुआ इस वक्त उनको, हे राजा जब विष्णु के सहयोगी, माफ कीजिए, हे राजा जब असुरों का सामान्य क्रोध भड़क उठा तो उन्होंने अपने अपने भाले तथा त्रिशूल अपने हाथों में ले लिए और बलि महाराज की इच्छा के विरुद्ध वे भमन देव को मारने के लिए आगे बढ़ गए। तो उन्होंने, इनफैक्ट बाद में रोक लेंगे, पहले ठीक है ज़्यादा जोश था, फिर जब पिटेंगे तो होश आ जाएगा अपने आप ही, तो अभी आप देखेंगे अगले में। तान अभी आविध्रवतो दृष्ट्वा दिति जानिकापन निपा प्रयस्यानुचरा विष्णु प्रत्यशेधन उदायुधः। तो क्या हुआ, हे राजा जब विष्णु के सहयोगियों ने देखा कि असुर सैनिक हिंसा पर उतारू होकर आगे बढ़ रहे हैं और तो वे हंसने लगे। क्यों हंसने लगे, गिलड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागते हैं। तो उन्होंने अपने हथियार उठाते हुए असुरों को ऐसा प्रयत्न करने से मना किया, यानी वर्ण भी किया, देख लो, ठीक है। तो मगर और कौन कौन था, अब अगले श्लोक में आ रहा है कि कौन कौन थे वहां पर, ठीक है। नंद सुनंद यथा जयो विजय प्रबलो बला कुमुदा कुमुदाक्ष च विश्वक्षेन पतत्रीरात जयंता श्रुतदेवश्च पुष्पदंतो अथ शाक्वतः सर्वे नागायुत प्राणश चमुम ते जगनूर आसुरिन। तो अब ये नाम है सबके, नंद सुनंद जय विजय प्रबल बल कुमुद कुमुदाक्ष विश्वक्सेन पतत्रीराट यानी गरुड़ जयंत श्रुतदेव पुष्पदंत तथा शाक्वत, ये मेजर, ये सभी भगवान विष्णु के संगी थे। ये वे 10,000 हाथियों के तुल्य बलवान थे, अब वे असुरों के सैनिकों को मारने लगे। तो अब ठीक है, अब लड़ाई शुरू हो गई। तो फिर क्या हुआ, हन्यमानं स्वकं दृष्ट्वा पुरुषानुचरैर् बलि वारायम आस संवृधन काव्य शपम अनुस्मरण। तो जब बलि महाराज ने देखा कि उनके अपने सैनिक भगवान विष्णु के अनुचरों द्वारा मारे जा रहे हैं तो उन्हें शुक्राचार्य का शाप याद आया और उन्होंने अपने सैनिकों को युद्ध जारी रखने से मना कर दिया। तो यहाँ देख सकते हैं ये शुरुआत कैसे हुई थी, शुरुआत हुई थी जब बृहस्पति जो है वो नाराज हो गए थे, तब देवताओं की बारी थी, वो आ रहे, अब शुक्राचार्य जो है उन्होंने शाप दिया था तो अब बलि के। बट डिफरेंस क्या है, इंद्र के केस में जो है वो ये बात समझ नहीं आई थी, उसे हारने के बाद समझ आई थी। यहाँ जैसे बलि ने देखा कि पहले रोका और जब से देखा कि अटैक कर रहे और वो पिट रहे हैं तो इमीजिएटली, तो ये डिफरेंस है। आप दो डिवोटिस के एडवांसमेंट का डिफरेंस देख सकते हैं। कि जो जितनी जल्दी उस बात को पकड़ ले तो उतना आप किसी भी भक्त को आप देख सकते कि गलती करना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है गलती कौन से स्टेज पर पकड़ी जाती है कि उसका पूरा अंजाम भुगतने के बाद अकल कई बार वैसे भी नहीं आती पर कई बार बाद में आती है, और कई केसेस में जो जितना उन्नत भक्त होगा उतने पहले बात पकड़ लेगा। तो वहीं पे बोले ठीक है हो गया अभी रुक जाओ क्यों, अब आप देखेंगे अब बोल रहे हैं अब बाली महाराज जी। हे विप्रचित्ते, हे राहो, हे नेमे सुर शुयताम वचः मा युद्धाय निवर्तता भान नना कालोयम अर्थकृत कि हे विप्रचित्ति, हे राहु, हे नेमी, जरा मेरी बातें तो सुनो, तुम लोग मत लड़ो, तुरंत रुक जाओ, क्योंकि यह समय हमारे अनुकूल नहीं है। रोकती जय श्री राधा राधे रमन जी के, जय तो या प्रभु सर्वभूतानां सुख दुख पपत्तये तम नाति वर्तितुम दैत्य पौरुषेर ईश्वर अपमान। तो क्या हुआ है अभी कि हे दैत्यो, कोई भी व्यक्ति मानवीय प्रयासों से उन भगवान को परास्त नहीं कर सकता जो समस्त जीवों का सुख तथा दुख देने वाले हैं। डायरेक्ट उनको बोला कि नहीं आप कर सकते। देन 21 योनो भवाया प्राग आसित अभवाया दिवानुकाशम दिवानुकाशम स एव भगवान अद्य वर्तते तत् विपर्ययम। तो परम काल जो भगवान का प्रतिनिधि है और जो पहले हमारे अनुकूल और देवताओं के प्रतिकूल था, वही काल अब हमारे विरुद्ध है, इसलिए रुक जाओ। और फिर उसके बाद आज का ये श्लोक यहाँ पहुंच गया। बलेना सचिवैर्बुद्ध्या दुर्गे मंत्रा शौधिभिः समाधिभिः उपायश्च कालं नात्येति वै जना बलेन सचिवैर्बुद्ध्या दुर्गैर्मन्त्रौषधीभिः समाधिभिः उपायश्च कालं नात्येति वै जना बलेन सचिवैर्बुद्ध्या दुर्गैर्मन्त्रौषधीभिः समाधिभिरुपायश्च समाधिभिरुपायश्च कालं नात्येति वै जना। धन्यवाद। शब्दार्थ हमारे पीछे दोहराए, शब्दार्थ एवं अनुवाद जगत गुरु श्री प्रभुपाद के द्वारा, श्री प्रभुपाद के जय। बलेना बल द्वारा सचिवै मंत्रियों की सलाह से बुद्ध्या बुद्धि से दुर्गे किलो से मंत्र औषध आदि भी योग मंत्रों या औषधियों के द्वारा सामादि भी राजनीति तथा अन्य ऐसे साधनों से उपायचा इसी प्रकार के अन्य उपायों से कालम काल जो भगवान का प्रतिनिधि है ना कभी नहीं अत्येति जीत सकता है वही निसंदेह जनहा कोई व्यक्ति। तो अनुवाद सुनिए और महत्वपूर्ण श्लोक है। कोई भी व्यक्ति भौतिक बल मंत्रियों की सलाह बुद्धि राजनीति राजनय मतलब राजनीति किला मंत्र औषधि जड़ी बूटी या अन्य किसी उपाय से भगवान स्वरूप काल को परास्त नहीं कर सकता। तो बड़ा ऑब्वियस श्लोक है, पर ये श्लोक अगर आप देखें किन्हें बोला जा रहा है, असुरों को। और इससे पहले भी अगर आप श्लोक देखें, जैसे जब बलि महाराज जी शुरू किया, ये श्लोक है, इससे पिछला श्लोक और उससे पिछला श्लोक, देखिए ये श्लोक है, ये क्योंकि 22वां है, 20वां श्लोक है। हे दैत्यो, मैं दोबारा इसलिए पढ़ रहा हूँ, हे दैत्यो, कोई भी व्यक्ति मानवीय प्रयासों से उन भगवान को परास्त नहीं कर सकता जो समस्त जीवों का सुख तथा दुख देने वाला है। एक मिनट, नहीं, इससे पहले वाला श्लोक, सॉरी, इससे पहले वाला श्लोक 19वां श्लोक था। इसमें कह रहे हैं, हे विप्रचिति, शुरुआत जब करी, जब रोकना शुरू किया, हे विप्रचिति, हे राहु, हे नेमी, सब असुर हैं, जरा मेरी बात तो सुनो, तुम लोग मत लड़ो, तुरंत रुक जाओ, क्योंकि यह समय हमारे अनुकूल नहीं है। स्टार्टिंग किया इससे, फिर उसके बाद क्या बोला, उसके बाद बोल रहे हैं कि देखो, कोई भी मानवीय प्रयासों से भगवान को परास्त नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोला, परम काल जो भगवान के प्रतिनिधि हैं तुम्हारे अनुकूल और देवताओं के प्रतिकूल हैं, वही काल अभी हमारे, पहले जो उल्टा था उल्टा है, अब हमारे विरुद्ध है। तो इसलिए कोई व्यक्ति भौतिक बल, मंत्रियों की सलाह, बुद्धि, राजनीति, मंत्र तंत्र, इन सब चीज़ों से जो है जड़ी बूटी आप नहीं कर सकता। तो जो मेरे को समझ आया स्ट्रैटेजी जो है कि एक असुर को अगर प्रचार करना है, बोल उसको कोई बात समझानी है भगवान के बारे में, तो ऐसे ही समझाई जाएगी उसको। अगर ये बोलेंगे कि जी भगवान है, भगवान के सामने किसी की कुछ नहीं चलती, परम भगवान है, तुम सरेंडर करो, अभी 4 श्लोक पहले इन्होंने क्या बोला था याद है, बढ़ के बताता हूँ, सीधा ही था, अतः एक इस वामन देव भगवान विष्णु को मार डालना हमारा कर्तव्य है। उसके बाद क्या, उसको जस्टिफाई कैसे किया, यही हमारा धर्म है, इसे तुम भगवान बताओगे, तुम्हें उल्टा टांग देगा तो इसको ऐसे ही समझाया जाएगा। सो लाइक जब हम देखते हैं कि जब हम ये, तो ये मेरे को तो वैसे जो ये यूजुअली जो ये फाइटिंग सीक्वेंसेस होती हैं, तो एक तो है कि ठीक है, फाइटिंग सीक्वेंसेस से क्या सीखने को मिलता है, बहुत सारी शिक्षाएं हो सकती है। जो मेरे को जो चीज़ ज़्यादा टच करती है, आई फाइंड कि इसके अंदर जो ये बैटल स्ट्रेटजीज हैं, ये हूबहू प्रीचिंग स्ट्रेटजीज में कन्वर्ट हो सकती है। जो ये लड़ाई करने के जो तौर तरीके, हथकंडे हैं, कौशल हैं, युद्ध कला कौशल जो है, वो प्रचारक के दृष्टि से अगर देखें तो उसको प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरवाइज जब हम ये पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ मुझे नहीं लगता कोई इतना बड़ा क्षत्रिय बैठा है जो इसको इस्तेमाल कर सकता है, तो फिर क्या करेंगे इसके अंदर। तो कई बार होता है कि चलो मकाओ, आगे बढ़ाओ उसको, जल्दी जल्दी चलो आगे चलो। तो बट जैसे एक रीचिंग स्ट्रेटजी के अंदर इस्तेमाल होता है कि किस वक्त क्या चीज़ इस्तेमाल करी जाएगी। जैसे कई और केसेस में, जैसे मुझे, मैं अगर वैसे रेफरेंस दूँ, जैसे पहले था कि नहीं आगे आएगा, जैसे ये वन ऑफ द बैटल बिटवीन डेमीगॉड्स एंड डीमंस, जिसके अंदर जो है पहले शिवजी और इनका होता है लड़ाई होती है, ये त्रिपुरारी जब बनते हो, त्रिपुरा असुर जो है, त्रिपुरा असुर जो होते हैं वहाँ पे, तो पहले क्या करते हैं, पहले खूब, जैसे आजकल भी देखा जाता है, खूब बम्बार्डमेंट करते हैं, दबा के खूब तीर छुड़ाते हैं, यानी कि पहले उसको बिल्कुल शांत कर दो जाएगा, पहले नहीं घुसे चले जाते हैं, पहले घुसे चले जाएंगे तो बहुत हाई कैजुअलिटी रेट है। तो प्रीचिंग स्ट्रेटजी भी कुछ इसी तरीके की है कि पहले जो है नॉलेज ट्रांसमिशन से जो है उसका दिमाग ठीक किया जाता है, पहले सीधा आप उसको बताना शुरू करोगे कि ये भगवान है, ये फर्ज है, तुम भक्ति करो, ये करो, नहीं चलेगा। हमने देखा है प्रीचिंग स्ट्रेटजी यूजुअली सक्सेसफुल नहीं होता, दैट इज ऑल्सो प्रीचिंग, इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है, बट इट वोंट हैव एनी इफेक्ट। यू मे गो ऑन प्रीच बट देर विल हार्डली बी एनी लर्निंग इन्वॉल्व इन इट। द दो अलग अलग चीज़ें। प्रचार करना अपनी जगह है और सामने वाले का सीखना अपनी जगह। मैंने बहुत प्रचार किया, सामने वाला कुछ नहीं सीखा, तो वो अब फिर हम उसको गालियाँ दे सकते हैं ये इसके, और भागवतम को मिसकोट कर सकते हैं कि इसके, या भागवत गीता को मिसकोट कर सकते हैं कि इसके पास पुण्य कर्मणा नहीं है, इसके पास पुण्य की कमी है इसलिए घुस नहीं रहा। फैक्ट ये है कि हमारी स्ट्रैटेजी में फॉल्ट है। तो किस वक्त क्या चीज़ दी जाए, जैसे इसके अंदर एक डेमोनिक उसमें भी बिल्कुल जो डायरेक्ट भगवान पर अटैक करने के आमादा है और करने के बाद भी, यानी इट वॉज स्टिल गोइंग ऑन, ऐसा नहीं कि लड़ाई छूट गई, लड़ाई छुड़ाने के लिए गया छुड़ाई, तो इससे ज़्यादा एक्सट्रीम सर्कमस्टांस क्या होगा? ऐसा तो कोई हमें, मुझे नहीं लगता कि आमतौर पर वास्ता पड़ता है प्रीचिंग उसके अंदर कि कोई मंदिर तोड़ रहा हो या विग्रह तोड़ रहा हो उस वक्त हम प्रीचिंग करते हैं, ऐसे मौके नहीं कभी मुझे नहीं लगता किसी के आए हैं, भगवान न करे आए किसी के, मगर अदरवाइज। सो मेरे को जो दो तीन चीज़ें मतलब इसमें समझ आता है, एक ये, दूसरा अगर आप देखें इसके अंदर, मैं दो श्लोक बराबर पढ़ता हूँ, ये रहा। हे राजा, असुरों का सामान्य क्रोध भड़क उठा, उन्होंने अपने अपने हभाले त्रिशूल हथियार हाथों में ले लिए और बलि की इच्छा के विरुद्ध वामन देव को मार जाने के लिए आगे बढ़े। तो असुर कैसे थे, असुरों का मिजाज कैसा था? हाँ, क्रोध से भड़क उठे थे, ठीक है ना, ये दूसरी बेवकूफी है। अगर लड़ाई में जीतना है तो कभी गुस्से में आदमी एंगर में हमें आपसे लड़ाई हार जाती है। और अगला श्लोक देखिए क्या, ये थे, इनको देखिए कैसे, नंद सुनंद जय विजय, नहीं सॉरी, हे राजा, जब विष्णु के सहयोगियों ने देखा कि असुर सैनिक हिंसा पर उतारू होकर आगे बढ़ रहे हैं तो वे हंसने लगे, वो नहीं आंखें निकाल के बैठ गए, ये जीतने की निशानी। प्रीचर अगर जो है, इफ जिसको प्रचार किया जा रहा है, इफ ही इज एबल और इज सक्सेसफुल इन एजिटेटिंग द प्रीचर, वो उसकी जीत है। अक्सर देखा जाता है प्रीचर तैश में आ जाता है, जैसे ही कुछ बोलता है वो इतना पर्सनली ले लेता है, एज इफ ही हैज बीन पर्सनली हिट एंड ही स्टार्ट्स अटैकिंग, देन देयर इज नो प्रीचिंग इन्वॉल्व, देन दिस डिबेट, बिकॉज क्या किया, यू आर जस्ट सिंपली, यू नो, बिकॉज आपने सिर्फ क्या किया, आपने एक बंदे के फॉल्सिको को किक इन कर दिया, आप नहीं सुनने वाला हूं। क्योंकि अब ऐसे केस में, और प्रीचर अगर खास तौर पर उसको गुस्सा आ गया तो इसका मतलब उसको तो छोड़ो जिसको प्रचार करता, इसका अपना फॉल्सिको किक इन हो चुका। इट्स नॉट जस्ट अबाउट डिफीटिंग ए पर्सन, नॉट इज नो कन्विंसिंग इन्वॉल्व, तो ये जीतने की निशानी है। वो प्रीचर जीतेगा जो ट्राइंग सर्कमस्टांस में जो है अपना कंपोजर बना के रख सकता है, जो अपना संतुलन बना के रख सकता है, वो मुस्कुरा के प्रीच कर, ये मुस्कुरा, ये जीतेंगे। हमेशा देखा जाता है, जैसे आप देखते ही हैं, जैसे महाभारत वार में भी देखते हैं, अर्जुन जो है या पांडव इधर से हो गए या उधर से कौरव हो गए, एक दूसरे को खूब गालियाँ दे रहे हैं, क्या वजह है? दे आर वेरी सिविलाइज पीपल, हमारे जैसे नहीं अबे तबे करके बात करने वालों में से। तो वाई आर देयर डूइंग, बिकॉज ये डिलीवरेट स्ट्रैटेजी, जो गुस्से में आएगा वो हारेगा, डिलीवरेटली एक दूसरे को गुस्सा देना, जो गुस्से में आएगा, गुस्से का मतलब क्या होता है, गुस्से के बाद क्या होता है, बुद्धि नाशो प्रणश्यत, हाँ, तहसील, जैसे ही गुस्सा चढ़ेगा बुद्धि काम करनी बंद कर देगी, और लड़ाई ताकत से नहीं दिमाग से जीती जाती। उसी तरीके से प्रीचिंग जो है फोर्स से नहीं जीती जाती है, प्योरिटी से जीती जाती है। सो वो तरीका है इसका, सेकंड चीज जो मेरे को समझ आए। देन थर्ड जो मेरे को कई केसेस में जैसे देखा जाएगा, अगर आप देखेंगे बलि के केस में भी देखेंगे, नहीं बलि के केस में कम, औरों के केस में आप देखेंगे कि इवन असुर असुर लड़ते हैं कई बार, जैसे रावण जब निकला एक एक करके कई पिटा भी, फिर बलि के पास आया तो फिर वहाँ पे वामन देव ने जो है मार के कहाँ फेंक दिया उसको दूर, बट एनी वे, बट उस स्ट्रैटेजी से कर, ये थर्ड स्ट्रैटेजी है कि पहले कमज़ोर पे वार किया जाता है, फिर ताकतवर व्यवहार किया जाता है जब आपकी ताकत बढ़ जाए। यानी पहले सीधा शूटिंग फॉर द राइनोसरस के लिए जाएंगे तो राइनोसरस जो है उसकी एक सींग होती है वो आप राइनोसरस के सींग के ऊपर दिखाई दोगे। शूटिंग फॉर द राइनोसरस करने के लिए पहले शिकारी होना जरूरी है। जिसके बस का तीतर बटेर नहीं है वो राइनोसरस मारने चला है तो देख तो ले शक्ल अपनी आईने में जाके पहले। तो वो चीज है तो पहले वहां से शुरू, यानी बेसिस से शुरू किया जाता है सीधा ही किसी स्ट्रांग अपोनेंट को। कई बार भक्तों का होता है बिल्कुल जोश चढ़ जाते हैं, नहीं हम फलाने को प्रीच करेंगे। अरे पहले आसपास जमीन को तो देख लो ने। तो ये थर्ड स्ट्रेटेजी, थर्ड लर्निंग, हमें लड़ाई का तरीका ये है कि पहले जो जिसको आप घेर सकते हो उसको घेर, उसके बाद फिर आप बड़े उसके कॉमन सेंस है बेसिकली। तो कई बार भक्त लोग इस चीज़ में रहते हैं जी सीधा राइनोसरस का शिकार करना है, सीधा होता नहीं है राइनोसरस का सीधा शिकार, बहुत कम देखा है। आप लोगों का क्या तजुर्बा क्या बताते हैं कितना राइनोसरस शिकार कर लिया है बिल्कुल शुरू शुरू में जाते ही पहले दिन? तो वही बात है, सो देन सेम फॉर दिस प्रीचिंग स्ट्रेटेजी इन ए वॉरफेयर सेम चीज, बिकॉज प्रीचिंग इज वेरी सिमिलर टू फाइटिंग एक्सेप्ट दैट that preaching is the fighting of the brahmanas. So बस ये तो ये समझ आया। और इस पूरे प्रसंग में जो एक और चीज़ देखने को मिलती है, जो जैसे अभी जो हो रहा है कि भगवान विष्णु जो है वो देवताओं के तरफ है, तो मगर देखा जाए पहले वो दोनों के तरफ है। देवताओं को जो चाहिए था वो देवताओं को मिल गया। देवताओं को क्या चाहिए था? देवताओं को इंसाफ चाहिए था कि जी हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, इसने छीन लिया, हमें इंसाफ दिलाओ, हमारा राज वापस ले लो। बलि को क्या देने की जरूरत थी? बलि को कृपा देने की जरूरत थी, भगवान ने उसको कृपा दी। दोनों चीज़ें अपनी अपनी जगह। सो तो इसमें दोनों चीज़ें आप देखें बैलेंस है भगवान को कि जस्टिस करते वक्त मर्सी कम नहीं करी और मर्सी देने के लिए जस्टिस में जो है कोताही नहीं करते। यूजुअली मर्सी एंड जस्टिस को लेके कई बार बहुत कंफ्यूजन रहती है डिवोटीज, मैंने कई बार नोट किया है ऐसे मेरा अपना एक्सपीरियंस। तो वो इसी कि किसी के लिए मर्सीफुल होने का मतलब है कि किसी के साथ नाइंसाफी करने की जरूरत है या किसी को इंसाफ देने का मतलब है किसी के साथ जुल्म करने की जरूरत है, मर्सी नहीं करी जा सकती। बट दीज टू थिंग्स आई मीन दैट इज द प्रैक्टिस जिससे जो है मतलब डिवोटिस से जो है और खास तौर पर जो लीडर्स हैं उनसे उम्मीद की जाती है कि दे लर्न दिस आर्ट बाय प्रैक्टिसिंग एंड रीडिंग, सर दूसरे डिवोटिस से बात करके केस स्टडीज देख के। शास्त्र में इतने केस स्टडीज हैं तो जैसे यही अपना केस स्टडी है कि किसी पे कृपा करने के लिए किसी पे जुल्म करने की जरूरत नहीं और किसी के साथ इंसाफ करने के लिए किसी का हक छीनने की जरूरत नहीं। सो दैट बेसिक दैट्स व्हाट आई कुड मुझे समझ आया। बाकी डिवोटीज का कोई कमेंट, कोई सवाल जी?
किसी भी मंत्र आदि भी और शाम वगैरह से हम काल के प्रभाव को नहीं जीत सकते। सो स्लाइटली आई लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू प्रेजेंटेड। वैसे ये ज्योतिष शास्त्र होता है और इसमें काल के प्रभाव पे कुछ इफेक्ट लाने का होता है मंत्र आदि भी से, मतलब जैसे किसी
ज्योतिष शास्त्र से प्रभाव,
ज्योतिष शास्त्र में ऐसे क्या रिकमेंडेशन है? मान लो देखते जैसे काल सर्प दोष आ गया किसी में,
जी जी,
तो देखते मंत्रों के प्रभाव से रिकमेंडेड होता कुछ इफेक्ट आने का।
हाँ।
पर यहाँ पे भागवतम में इस श्लोक के अकॉर्डिंग काल के प्रभाव पे हम मंत्र आदि भी से भी कोई कुछ हम प्रभाव,
हाँ, बिल्कुल ठीक है, आप उसको जीत नहीं सकते। प्रभाव का मतलब क्या है? आप उसको पोस्टपोन कर रहे हैं और उसका जो रिएक्शन होता है, प्रॉब्लम क्या होती है ये इसमें? यही तो डिफरेंस है बिटवीन, मैं आई एम मेकिंग अ स्टेटमेंट नाउ, डिवोटीज का आशीर्वाद और डिवोटीज का अभिशाप दुनिया का कोई टोना टोटका काम नहीं करता। किसी भक्त ने आपको आशीर्वाद दिया है कि ये है, भक्तों का आशीर्वाद है, करने दो जिसको जो करते हैं, वो आशीर्वाद नहीं काट पाएगा आपका। और किसी भक्त की बद्दुआ लगी है, बुला लो जिसको बुलाना, जौन सा तबीज पहनना पहन लो, करके देखने पर्सनल एक्सपीरियंस है वो क्या है, क्योंकि इटर्नल वर्सेस टेम्पोरल है। तो ये काल, जहाँ पे ये बात हो रही है, आप काल को कितना, आप ज्योतिष जब हम जो ये उपाय होते किस लिए, उपाय होते हैं उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति जो है डायरेक्ट चीज़ को हेड ऑन नहीं ले सकते, उसके लिए उपाय है। हेड ऑन क्या है, हेड ऑन इज टेक योर कर्म एंड गो अहेड विद इट। बट जो व्यक्ति अपने कर्म के फल को जो है वो नहीं टॉलरेट कर पा रहा, तो मेक हिज लाइफ ईजी बट दैट हैज़ अ कॉस्ट। क्यों भक्त लोग जो है मतलब भक्तों को ये हिदायत दी जाती है कि आप, और ये रैम्पेंट प्रॉब्लम है जो आपने छेड़ा है। दीक्षा गुरु होते होंगे कोई गोस्वामी या स्वामी, और ये एक्चुअल गुरु जो होते हैं वो उसका ज्योतिषी होता है। मैं डिवोटीज की बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी वो बोल दे कि जी फलाना होना है, कुछ भी हो, प्रॉब्लम हो जाए, उसके दीक्षा गुरु शिक्षा गुरु को नहीं पता, ज्योतिष को पता होगा, उपाय भी हो गया। रैम्पेंट प्रॉब्लम है आई सी, मतलब इन आवर कम्युनिटी एंड मेनी अदर कम्युनिटीज ऑल्सो। क्यों, क्योंकि कन्विक्शन, क्योंकि उतना सबर ही नहीं है, सबर देना उसका एक कॉस्ट है, वो नहीं पता, वो ज्योतिष नहीं बताएगा कि आप कर्मा से कर्मा काटने की कोशिश कर रहे हो, दैट प्रोड्यूसेस अनदर कर्मा, उसका क्या करोगे, तो इट विल गो ऑन, दैट मीन्स ऑलवेज देयर विल बी अ बैलेंस कर्मा फॉर यू, एंड दैट बैलेंस कर्मा विल बी इवन मोर सीवियर देन द वन यू हैव, जिसको आपने नलीफाई किया। क्योंकि अगर मुझे मान लीजिए कि कॉपर काटना है, तो मुझे कम से कम लोहा स्टील चाहिए, कॉपर में गोल्ड से तो नहीं काट सकता, हाँ तो बस बचा क्या मेरे पास। इसी तरीके जो जिससे मैं काट रहा हूँ वो काटने वाला औजार कटने वाले से ज़्यादा भारी होगा, ये कॉमन सेंस है, तो इसलिए मना किया जाता है इसके लिए। ये इसके लिए देखते हैं, जो अगर टेक्निकली आप चलो, देर इज नो एंड टू इट। कर्मानी निर्धारती किंतु तथा भक्ति भाजा, क्यों बताया गया, इसीलिए कर्म ना कहना कि नहीं निकाल पाता बंदा, क्योंकि कर्म खत्म नहीं होगा, तो लोग एडजस्ट कर रहे होते कर्म को। तो आप किसी का कर्म एडजस्ट करके अगर वो भक्ति में लगता है तो बात समझ आती है। मेजॉरिटी प्रॉब्लम जो होती है इसका, ये इतना मतलब ल्यूक्रेटिव होता है, इसमें लालच इतना तेज होता है, एक बार बंदा क्योंकि फट से काम होता है। जो एवरेज डिवोटीज हैं, मैं एवरेज बात कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा कि जो रोज दिन के 64 माला, मैं नहीं करता वो, मैं कर रहा हूँ हमारे जैसे, मैं अपनी बात इस वाला माला घिसके करने वाले, ये करने बैठ जाए ना कर्मकांड, ये सारे कर्मकांडों की छुट्टी हो जाएगी। पूछो क्यों, वो इसलिए कि इनको इतनी बड़ी बड़ी तेज साधना करने की आदत है, सतोगुण बहुत तेज है। वो जो कर्मकांड ज्योतिषी चीज़ें बताई जाती हैं, रजो तमोगुण के प्रभाव में मेजॉरिटी कुछ ही सतोगुण में चीज़ें होती हैं, जो कि बहुत आसानी से प्राप्त की जाती हैं। सिद्धियाँ क्या होती हैं, 21 दिन ये मंत्र कर लो, 21 दिन ये इतने दिन कर लो, इसके घर में बुरा करना है जाके कौए का पंख फेंका, इसके वहां पर जो है ये डाला, ये क्या है, ये किसके काम लगते हैं, जो निहायत ही आलसी होगा, जिसके बस का कुछ नहीं होगा, वो यही कर सकते, कौए का पंख फेंकना और वो नींबू डालना और इसके यूं करना, कपड़ा ला के डाल दो उसमें बांध के रखाओ, किसके काम है। तो उसकी औकात पता चलती है कि बुरा मानने की क्या जरूरत है। और डिवोटीज जो है वो सालों साल लगे होते हैं, वो उसके बाद भी उन पर कॉम्प्लेक्स होता है, जी प्रभु जी कुछ हो नहीं रहा, ठीक है, क्योंकि सस्ता नहीं है। तो जब आप टेम्पोरल पे जाओगे तो टेम्पोरल तो बड़ा आसान है, ये कर्मा ऐसे, इसको नलीफाई कर दो, इसको इससे नलीफाई कर दो, इसको इससे कर दो, वहां चले जाओ, उसके वहां जाके धागा बांधो, वैसे भी ऐसे ही होते हैं, शादी करा लो इनसे, तो उसके बाद देखो किसी का मंगल दोष आ जाए, आप तो क्या, मैं कई बार देखता हूँ चीज़ें, उसके बाद जो शुरू होता है उनका, इधर पहुँच जाओ, वैसे कोई नहीं लेना देना, जैसे होता है ना टिपिकल कि काम पड़ जाए तो गले को भी बाप बना लेते हैं, या किसी को बाप बनाने को तैयार है, वैसे कोई नहीं किसी, वैसे बोलेंगे जिन्हें हम डेमी गॉड्स वर्शिप नहीं करते, उस टाइम पहुँच जाएंगे त्र्यंबकेश्वर, उस वक्त पहुँच जाएंगे सारे ज्योतिर्लिंग में दर्शन करने के लिए, वहाँ घूमने के लिए, इधर पीपल में चले जाओ, वहाँ फिर मेहंदीपुर बालाजी, सब पता है। पर तो ये ड्रामे हैं, ये पता नहीं आगे क्या होना है, अगर ये काम भी करेगा तो आगे इसका कॉस्ट क्या है, इसी लिए डिवोटेड क्या हमारा प्रोसेस क्या है, हमारा प्रोसेस ये है कि भैया पहले कोई कर्म कम कर्म बटे रहे हुए जो और नए बटोरने चले हो, तो इसीलिए प्रभुपाद का खासतौर पर आप जब देखेंगे जो मूड है कट टोटली नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना, उसकी वजह यही है कि भाई पहले का जो जल रहा है इधर से तुम भरे जा रहे हो दोबारा, तो उसको जलाने में इतना टाइम लगेगा, पता नहीं क्या क्या कुछ करके रखा हो, इसीलिए बिल्कुल कट कर करके बिल्कुल नहीं करना। आइडियली स्पीकिंग मतलब एक ये आर्गुमेंट आप दे सकते हैं इस चीज को कि एज ए दवाई इस्तेमाल कर सकते हैं, और दरअसल दवाई के बतौर ही दी गई थी। तो प्रॉब्लम क्या है, अगर आप दवाई को नशे के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे, खासतौर पर वो दवाई जिसके अंदर नशे का पैमाना होता है, तो फिर वो एक नौसिकी के हाथ में नहीं दिया जा सकता। नींद की दवाइयाँ बगैर प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलती ना, क्यों नहीं मिलती, ये किसी पागल के हाथ लग जाए वो मरमरा जाएगा खा के उसको। इसीलिए ये कर्मकांड जो है आइडियली स्पीकिंग इसलिए बिल्कुल बंद किया हुआ है हमने, ये सारे नौसिकी हैं। आप देखेंगे कई भागवतों में कई राजा होगा वो फराना यज्ञ कर रहे हैं, ये यज्ञ कर रहे हैं, वो यज्ञ के जो कि अपरेंटली कर्मकांड है, ही कैन डू जस्टिस विद इट बिकॉज ही इज अ वेरी गुड डिवोटी, ही विल टेक द बेनिफिट एंड स्टिल गो अहेड विद दिस एंड नॉट अफेक्टिंग हिज भक्ति, हाउ मेनी आर देयर। इसीलिए जनरल प्रिंसिपल ये आपके लिए नहीं है। वैसे भी ज्योतिष का पर्पस क्या है, ज्योतिष का पर्पस आपका ट्रैक बताना कि ये प्रोबेबिलिटीज है। ज्योतिष जो है प्री डिटर्मिनेशन पे बेस होता है, प्री डेस्टिनेशन पे बेस नहीं होता, उन्होंने तो यही कन्फ्यूजन होती है कि ऐसा बता दिया है ऐसा होगा, भाई तुम कुछ नहीं करोगे तो होगा। अब अगर कोई बता रहा है तुम्हें कि भाई एक महीने बाद या तीन महीने बाद तुम्हारा एक्सीडेंट होगा, इसका मतलब है भैया सावधानी बरतो, इसका मतलब होगा नहीं है, हो सकता है, तुम वैसे चल रहे हो तो होगा। फिर तुम बोलो जी ज्योतिष सच था, वो सच नहीं था, तुम बेवकूफ थे कि तुम्हें बताने के बावजूद भी तुम ऐसे थे, तुम कैसे हो, तुम्हें बताने के बावजूद तुम इतने ढीठ हो, तो वैसे कितने ढीठ होते होगे, इसका यह मतलब है। उनको पता नहीं ज्योतिष कैसे इस्तेमाल होती है, ये ज्योतिष के बाद हाथ बातें पहुंच जाएंगे, जी फलाना कर दो हमारा, वो क्या करेगा बेचारा, जी तुम्हारे उसमें मंगल दोष आ गया, क्या करे, फिर मंगल हटा के इधर रख दे, वो सबके लिए बराबर है, तुम्हारे कर्मा के हिसाब से वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो रिपोर्ट कार्ड दिखा रहे। ज्योतिष के बेचारा क्या करता है, ज्योतिषी के पास चलेगा, उसने बता दिया तुम्हारा यू है, वो रिपोर्ट कार्ड है। अब आप बोल दो ज्योतिष तो ये मनुष्य है, जैसे कोई एक्सरे मशीन में हाथ डाले, एक्सरे मशीन बोले भैया तुम्हारा फ्रैक्चर है, बोले एक्सरे मशीन मनुष्य है, तो इसी तरीके की चीज है। ये चीजें सही तरीके से क्या होता है ना, जब प्रॉब्लम क्या है ना, जब बंदर के हाथ में तोप आ जाती है तो जो होता है ये प्रॉब्लम है। ये ज्योतिष जिसको उसका कख नहीं पता वो पहुंच जाते हैं ज्योतिषी के पास, तो फिर यही होता है, ज्योतिषी ने यूं बोला है। मैं तो सुनता हूँ किसी का लिखा होता है तुम्हारा गुरु बड़ा स्ट्रांग है, और गुरु हमेशा ही स्ट्रांग होता है, वो गुरु की बात नहीं कर रहा, वो जुपिटर की बात कर रहा है, बेवकूफ, वो इंटरप्रिटेशन नहीं पता होते। ये अगर उपाय करता होगा क्या करता होगा मुझे बताओ, और अगर इसको ठगा जाता है तो मैं कहता हूँ बिल्कुल ठीक ठगा जाता है, और ठगना चाहिए, जिसको जिस चीज की समझ नहीं है उस चीज को हाथ लगा कर्म काटने चले। कर्म किसके हैं, मेरे कर्म है, ही इज अ पर्सन इज नॉट एबल विलिंग टू टेक हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। किस टाइप का उसकी माइंडसेट कैसा होगा, और इससे भी आगे होता है वो बोल देते जी ये फलाना है टोटका करा लो, इस पर टोटके का क्या मतलब है, वो किसी और के डाल दो, किस टाइप का माइंड सेट है। सो दैट्स नॉट इवन ए कल्चर्ड पर्सन। सो इसलिए यहां पर तभी तो जो बात है वो सही बात बताई जा रही है, इसलिए भैया ये नहीं आप कर सकते, आप किसी भी तरीके से नहीं कर सकते इसको, ये आपका कर्म है, काल है, इसके सामने आपकी नहीं चलेगी, दाल नहीं गलेगी, इसे सबको एक्सेप्ट कर लेना। और बोल के सोल्यूशन क्या बोला उन्होंने, सोल्यूशन भी ये बोला कि इस टाइम पे एक्सेप्ट कर लो बस, और एक्सेप्ट करने के बाद क्या हुआ, अल्टीमेट जीत इनकी हुई। सबर नहीं होता एक्चुअली. प्रॉब्लम क्या है, ये जो ज़्यादातर लोग ये जाते हैं ना, इनमें सबर नहीं होता बिल्कुल. मेजॉरिटी लोगों में सबर नहीं होता, थोड़ा सा होते ही भागने लगते हैं बिल्कुल. और ना सबर होता है ना भगवान पर विश्वास होता है, क्या करें फिर. ठीक है जाओ, जिसको जाना है वो जाएगा. फर्स्ट क्या, सेकंड क्या, थर्ड कोई इनिशिएशन भी होती होगी ना, उसके बाद भी वो वहीं जाए. हमारा एक्सपीरियंस तो यही है, जाना जाओ. इसीलिए बहुत कम लोग भक्ति कर पाते ठीक से. और कोई हाँ, बड़ा बड़ा वैराइड है जी.
जैसे अगर सेकंड कैंटो में आता है कि
प्रोजीप सवाल पूछ रहे हैं कि जहाँ पे यहाँ पे काल की बात हो रही है, तो काल को लेके जो है भागवतों में अलग अलग जगह पे बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें बता रही हैं. मतलब मेजर हाँ इशू है.
जैसे सेकंड कैंटो में है कि कोई भी अगर बोथ बाय राइजिंग एंड सेटिंग द सन डिक्रीजेस द ड्यूरेशन ऑफ.
हाँ एक श्लोक है.
बट एक्सेप्ट वन हु यूटिलाइजेस द टाइम बाय डिस्कसिंग द टॉपिक्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा. तो इसको किस कॉन्टेक्स्ट
किस कॉन्टेक्स्ट में. आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस बट आई हैव एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस. I am not right now prepared for this, but I have an explanation. और जो बिल्कुल श्लोक को जस्टिफाई करते हैं, क्योंकि ये श्लोक apparently ये समझ आते हैं कि सारे मरते हैं तो फिर भक्त का क्या अलग से क्या हुआ, but it justifies. I have an explanation.
और जैसे यहाँ पे आज के श्लोक में बलि महाराज कह रहे हैं कि अभी समय अनुकूल नहीं है तो आप छोड़ दो, अभी एक्शन मत लो. तो ये इसको प्रैक्टिकल अपने लाइफ में किस प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं. मान लो अगर जैसे प्रभुपाद प्रचार के लिए ट्राई कर रहे थे और अगर कोई सक्सेस नहीं मिल रहा, तो ये कहना ठीक होगा कि उस समय समय अनुकूल नहीं था.
ऐसी कई चीज़ें जैसे प्रभुपाद एक जगह बोलते हैं ना कि भैया अगर नहीं चल रहा तो सेट बैक एंड चांट हरे कृष्ण. देयर आर इंस्ट्रक्शंस लेटर्स हैं सब प्रभुपाद के कि इफ इट्स नथिंग इज वर्किंग देन सेट बैक एंड चांट हरे कृष्ण. इसका मतलब क्या है, वेट फॉर द टाइम एंड देन यू स्ट्राइक अगेन. इसका मतलब ये नहीं गिव अप, इसका मतलब यू वेट. यही फर्क है. मैं आई एम वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी बिकॉज इट इज बैटल, इट इज वॉर. ये हिंदी पिक्चरों के हिसाब से तो लड़ाई नहीं चलती. हिंदी पिक्चरों का सिस्टम होता है आगे बढ़ो, आगे बढ़ना पीछे हटना बेवकूफ. अरे भाई वो स्ट्रेटजी होती है, लड़ाई जंग जीतने के लिए लड़ी जाती है, चाहे वो आगे बढ़ के जीतो चाहे पीछे हट के जीतो. तो वो चीज़ है. तो ये आगे बढ़ने वाला सिस्टम जो होता है ना, वो नहीं हो रहा काम तभी भी लगे पड़े उसके भैया स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है या यहाँ पर नहीं होगा. जब आपने बात बोला ले लेते हैं इसी केस को, लीग ऑफ डिवोटीज कर लिया प्रभुपाद ने, कितने साल कर लिया, 15 साल लगा लिए यहाँ पर. उसके बाद क्या हुआ, वहाँ चले गए बाहर, उसके बाद हिंदुस्तान है रौंद के रख दिया हिंदुस्तान को 5 साल के अंदर. अब मुझे बताओ लगे रहते हैं और 15 साल फिर छोड़ दिया, ठीक है नहीं हो रहा. जहाँ जहाँ जा सकते थे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट किसको छोड़ा था, सबको सबको सभी को कोशिश किया था, नहीं बनी बात, कोई बात बाहर चले गए. किसको प्रीचिंग करने, हिप्पियों को. वापस आए पूरी पूरी हिंदुस्तान उलट पलट करके रख दिए 5 साल के अंदर. यही प्रीचिंग स्ट्रेटेजी. लास्ट क्वेश्चन टाइम अभी
जैसे आप जंग की बात कर रहे थे कि जंग में दिमाग तो लगाना ही चाहिए, वो तो लाजमी है, बट क्रोध भी तो उतना ही जरूरी है क्योंकि बिना क्रोध के तो आप लड़ ही नहीं सकते.
नहीं, क्रोध को इस्तेमाल करने की जरूरत है. यू हैव टू यूज योर एंगर, नॉट बी यूज बाय एंगर. भगवान ने हर चीज़ बनाई है उसका सही इस्तेमाल के लिए. जंग में जो है गुस्से का इस्तेमाल किया जाता है, तैश में आके जंग नहीं लड़ी जाती, नहीं लड़ी जाती. आप देखिए जो जो लड़ा है वो पिटा है. मुझे लगता है आपको कभी स्ट्रीट फाइट का कोई एक्सपीरियंस नहीं होगा. अगर आपको कोई 2 से 3 लोग घेर ले तो आपका क्या, आपके पास क्या ऑप्शन है,
भागना ही होगा.
पहला बिल्कुल ठीक, पहला ऑप्शन है भागो. दूसरा ऑप्शन क्या है, नहीं भाग सकते तो हाँ
प्रोटेक्टिव मेजर्स,
चुप जाओ पिट जाओ. उसमें और बुरा होगा, पिटते को तो थप्पड़ ज़्यादा लगता है. हाँ ताकि और पिटो, यही है. इनमें से जो जो बोल रहे हैं इसकी किसी को लड़ाई का कोई एक्सपीरियंस नहीं है प्रैक्टिकल. उसका सिर्फ उस टाइम पे एक ही तरीका होता है, इन तीनों में से जो सबसे कमजोर है उसको पकड़ लो. कोई माफ नहीं करता, कोई माफ नहीं करता। पांच नंबर वाला तो माफ नहीं करता, सरेंडर कर देता हर कोई, रोज तो होता है। क्या किस तरह की बात आप कर रहे हो, 100 रुपए लेके छोड़ते हो, क्या बात कर रहे हो, नहीं छोड़ते। प्रैक्टिकल है ना, नहीं होता। आप ये भागवत से सीख सकते हो ये चीज, कोई आप अटैक कर रहा है भाई, आप वो अटैक करना है आप, सरेंडर कर दो, क्या बात कर रहे हो, मरवाने वाली बात है उसको। उसका तरीका ही ये बेस्ट चांस है, सबसे कमजोर पर अटैक करो, सबसे पहले उसको मारो अच्छे से, उसको जब मारो बाकी लोग डर से, वो ये प्रोबेबिलिटी जी बताएगा, क्या ठीक कह रहा हूँ। आप ही से पूछ रहा हूँ, आपने डील किए होंगे ना ऐसे कहीं से, कितना चांस है कि एक गुंडों ने घेर लिया मुझे, कितने चांस है मैं हाथ जोड़ूंगा तो मुझे छोड़ देंगे, कोई चांस नहीं है। सुन लो, बैठे ना पुलिस का एक्सपीरियंस, उसका यही तरीका है सर कि आप जो सबसे कमजोर है उसको मारो, उसको पकड़ के। तो इसी तरीके से ये चीज़ यू कैन यू अटैक, यू अटैक द वो द वीकेस्ट, यू डोंट अटैक समबडी स्ट्रॉन्गर देन यू। मैं प्रूफ करता हूँ इस चीज़ को, हंस रहे हैं करके, भैया शास्त्रों में बैटल का वो क्या है, आप अपने से स्ट्रांग से लड़ाई नहीं करते। जनरल प्रिंसिपल है, क्षत्रिय कोड ऑफ वॉर है ये, क्योंकि कॉमन सेंस पे बेस्ड है। बैटल अकाउंट इक्वल्स होते हैं, तो उसमें भी क्या वो है, इक्वल्स का क्या मतलब होता है, इक्वल इन जो उसके, यानी कि घुड़सवार से घुड़सवार लड़ा, ये मतलब है उसका। और जब आप जीतोगे तो आप हमें किस पर अटैक करते हैं, ये किस पर अटैक कर रहे थे पहले, वो कौन होते थे, जब हम देखते थे कि जी 10,000 सैनिक मार दिए अर्जुन ने एक बार में, वो क्या अर्जुन के बराबर थे क्या सारे, यही मतलब है। एक बार में 10,000 लिटा दिए, इतनी दहशत फैल जाएगी कोई आएगा नहीं आगे, ये मतलब है इसका। इसका मतलब मैसेकर नहीं होता, इसका मतलब किलिंग नहीं होता, यू किल अ फ्यू पीपल टू स्टॉप किलिंग, ये स्ट्रैटेजीज होती है। एक तरीका होता है 10,000 सन्यासी से भिड़ जाओ, और एक तरीका होता है कि एक प्रकाशानंद सरस्वती को पकड़ लो, ये तरीके होते हैं। बताओ टीचर, आप इन बातों को समझोगे नहीं, इस पर दांत निकाल के हंसोगे तो भाई दुनिया हंसेगी हम पे, ये तरीके हैं। प्रीचिंग मीन्स फाइटिंग। प्रभुपाद वाज सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ दिस। प्रभुपाद के कई शिष्यों का है, आप रेमिनेंसेस पढ़े, बोल ही इज डेमेनियर, ही सेड हिज डेमेनियर वाज मोर लाइक ए जनरल। तो कहते हैं ये चीज क्यों, क्योंकि हिंदुस्तान से बाहर मेजॉरिटी कंट्रीज में क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग सिस्टम होता है, आपको 2-3 साल आर्मी में काम करना ही करना। हमें तो नहीं पता, आर्मी को एक्सपीरियंस नहीं है, इन लोगों को होता है जो बात बोल रहे हैं, एम ही नहीं बढ़ के मार रहे, उन्होंने देखा है फैक्चुअल, आर्मी में ड्राफ्टिंग के बाद देखा है वहां पे क्या माहौल है, प्रभुपाद को मूड देखा लाइक अ जनरल, स्ट्रेटेजी है, तब आप लड़ते हैं। ये कोई, ये आपको क्या लगता है, ये कोई शायरी हो रही है यहाँ पर कि माया के खिलाफ जंग हो रही है, वाकई में हो रही है। और एक ऐसा दुश्मन जो आपको दिखाई नहीं देता, That's how you fight. ठीक है, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।